का दर्शन किया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष उपदेश दिया, अतएव अर्जुन तत्वदर्शी या गुरु है। अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। इसी तरह भगवान के साकार भक्त श्री अर्जुन के चरण चिन्हों पर चलकर भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, जिसकी पुष्टि व्यास, देवल, असीद, नारद तथा रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क आदि परवर्ती आचार्य एवं उनके भी बाद महानतम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुई है। तो फिर गुरु ढूंढने में कठिनाई है कहाँ? यदि कोई निष्ठावान है तो वह गुरु पा सकता है और हर बात सीख सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और जीवन लक्ष्य की खोज करे। अतएव महाराज सत्यव्रत हमें महाजन का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। महाजनो ये न गतहस्य पंथा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान दशा अवतार की शरण ग्रहण करे और उनसे आध्यात्मिक जीवन एवं जीवन लक्ष्य के बारे में सीखे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य आनंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे शुकोसो वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांतिकोनं न्यरहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चो। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्थापित प्रतिदिवसीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए, परंतु मेरा खुद यहाँ स्वागत हो रहा है। डेढ़ महीने के बाद मंदिर में आया हूँ। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब यहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ बहुत सुंदर प्रश्नों से होता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनि श्री सूद गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं और वही 6 प्रश्न के उत्तर में सूद गोस्वामी को मजबूर होकर भागवत कहना पड़ा। भक्तों, प्रश्न इतने श्रेष्ठ थे, प्रश्न इतने गुह्य थे कि उस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत की कथा नियुक्त हो गई। और उन प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि हे सूद गोस्वामी, अथ ख्याति हरेर धीमन अवतार कथा शुभा तान्यम वेद सर्वाणी लीला विदधत स्वयरम ईश्वरत स्वात्म मायया। बहुत सुंदर जिज्ञासा करते हुए शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं कि हे सूद गोस्वामी, हे धीमन, हे परम बुद्धिमान, कृपया करके आप हमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए। अवतार कथा शुभा, बोले कितनी कथा सुनानी है? कहते हैं अथ। अथ माने प्रारंभ। किसी भी कथा के किसी भी अध्याय के प्रारंभ में अथ शब्द लगाया जाता है। श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, शशि गौर निताय की, शैल प्रभुपाद की, हरे कृष्णा कृष्णा अथ शब्द के द्वारा कह रहे हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के समस्त अवतारों की कथा सुनाइए। भगवान के अवतार के बारे में सुनना चाहते हैं। भक्तों, अवतार का अर्थ होता है भगवान अपने धाम में नित्य विराजमान रहते हैं और कभी कभी इस पृथ्वी पर कुछ कार्य करने के लिए भगवान जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने की क्रिया को अवतार कहा जाता है। तो भगवान इस संसार में कई बार इस पृथ्वी पर आए हैं और इस पृथ्वी पर आने के पीछे भगवान का एकमात्र उद्देश्य भगवान के हृदय की करुणा है। इन अवतारों के पीछे भगवान की दिव्य करुणा है। करुणा से वशीभूत होकर भगवान अवतार धारण करते हैं। अतः कहते हैं कि आप हमें अवतारों की कथा सुनाइए। वह अवतारों की कथा कैसी है? बोले शुभा। यदि कोई व्यक्ति भगवान के अवतार की कथा सुन लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में शुभ ही शुभ होने लगता है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों की कथा कहते हैं और अंत में श्रुति फल बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के कृष्ण के अवतारों का स्मरण कर लेता है, कथा सुनने की बात दूर रही, उस कथा का रोज सुबह स्मरण कर लेता है, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते हैं, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होते रहते हैं। भगवान के अवतार शुभ प्रदान करने वाले, इसलिए कहते हैं अथ ख्याति हरेर धीमन अवतार कथा शुभा। सर्वप्रथम भगवान के अवतारों की कथा शुभ है और इसी के साथ साथ हरे। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वह सभी दुखों का हरण हो जाता है। हरे का अर्थ है हरण होना। भगवान समस्त दुख हर लेते हैं। और इतना ही नहीं, लीला विदधत स्वयरम ईश्वरत स्वात्म मायया। जो भगवान अपनी माया से युक्त होकर अपनी माया से अवतार धारण करते हैं, इस संसार में हम लोग हमारे कर्म बंधन के अनुसार इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं, परंतु भगवान अपनी माया से इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। आत्म मायया, आत्म माने अपनी माया से अवतार धारण करते हैं। कहते हैं भगवान की दो प्रकार की माया शक्ति, एक महामाया और एक योग माया। भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो पूर्ण रूप से योग माया से आच्छादित होते हैं, योग माया की सहायता से भगवान अवतार धारण करते हैं। तो आत्म माया, अपनी माया से जो निरंतर अवतार धारण करते रहते हैं, ऐसे स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले, बहुत सुंदर बताए, जब भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो पूर्ण रूप से स्वैरम स्वतंत्र होते हैं, और हम लोग जब जन्म लेते हैं तब पूर्ण रूप से परतंत्र होते हैं। इस संसार में कुछ लोग अपने आप को भगवान के साथ तुलना करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम, ये सब का अर्थ यही है कि मैं भगवान हूं, परंतु भगवान स्वतंत्र होकर अवतार धारण करते हैं और हम परतंत्र होकर। यदि हम स्वतंत्र होकर अवतार धारण करते हैं तो सब लोग धीरूभाई अंबानी के घर पे जन्म लेते हैं, परंतु देखा जाता है इस संसार में कुछ लोग जन्म से ही सिर के ऊपर कर्जा होता है, रोडपति होते हैं, दुख होता है जन्म से ही, इसका अर्थ है हम लोग परतंत्र हैं। परंतु शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं स्वैरम, भगवान स्वतंत्र हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, वे अवतार धारण करके तुरंत बड़े भी हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं, लीला, वे अपनी लीला में कुछ भी कर सकते हैं। बोले ऐसे भगवान की कथा सुनाइए। तब भगवान के अवतार के विषय में है, भगवत गीता में अवतार तत्व का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत, हे अर्जुन मैं तुम्हें जो यह भगवत गीता का ज्ञान देने जा रहा हूं, यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, स एवाय मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन। इस प्रकार से यह ज्ञान परंपरा से चलता गया, परंतु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, समय बीतते ही मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान लुप्त हो गया, परंतु आज मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूं वह सृष्टि के प्रारंभ में करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य देव विवस्वान को दिया था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप इतना क्यों फेंक रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अर्जुन ने तुरंत प्रश्न उठाया, भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न उठाते हैं, प्रभु बस अब ज्यादा मत फेंकिए। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु हे कृष्ण, सूर्य का जन्म तो करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले हुआ था और आपका जन्म कुछ साल पहले हुआ, प्राय अर्जुन और कृष्ण सम वयस्क थे। बोले मेरा और तुम्हारा जन्म लगभग साथ ही हुआ है और सूर्य का जन्म करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले, तो तुम कल के छोकरे सूर्य देव को कब ज्ञान देकर आ गए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। आप ऐलान करते हुए कहते हो सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को ज्ञान दिया था, लेकिन तुम्हारा जन्म तो कल हुआ, 100 साल पहले हुआ, तो सूर्य देव को आप कहां से ज्ञान देने चले गए। अर्जुन भी बहुत सुंदर जिज्ञासु था और बिल्कुल तात्विक प्रश्न पूछ लिया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन बहुनी में व्यतीतानी, हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, जन्मानी तव च अर्जुन, अर्जुन मैं बहुत बार जन्म ले चुका हूं और तुम भी बहुत बार जन्म ले चुके हो। तब तो अर्जुन ने कहा तब तो आप और मैं दोनों एक ही हैं। संसार के लोग कहते हैं जीव और शिव दोनों एक हैं, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जब भगवान ने कहा कि अर्जुन बहुनी में व्यतीतानी, मेरे पूर्व में बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तव च अर्जुन, और अर्जुन तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और जब मेरे मैंने बहुत जन्म ले लिए तो प्रथम मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया। तब वो प्रश्न तो साइड में रहा, तब अर्जुन का दूसरा प्रश्न, कृष्ण तब तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, आप भी बहुत बार जन्म लिए और मरे हो और मैं भी बहुत बार जन्म लिया हूं मरा हूं। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हाँ मेरे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन मुझ में और तुम में इतना ही अंतर है। तान्य अहम वेद सर्वाणि, मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उस सभी जन्म के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, और अर्जुन तुम्हारे जितने भी जन्म बीते हैं उस जन्म के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। यही है भगवान में और साधारण जीव में अंतर। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? परमात्मा समस्त जन्मों के बारे में, समस्त अवतारों के बारे में जानते हैं, अपने पूर्व के समस्त अवतारों के बारे में भगवान को ज्ञात होता है, परंतु इस जीव को अपने पूर्व जन्म की बात दूर रही, इस जन्म में माता के गर्भ में कैसी स्थिति थी ये याद नहीं है। यदि ये याद आ जाए तो संसार के लोग अपना समय फालतू का वेस्ट न करते, भक्ति में लग जाते। तीन चार दिन पहले क्या भोजन किया, किससे क्या बात की, यह भी याद नहीं रहता है। यह है भगवान में और साधारण जीव में अंतर। भगवान कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन इस प्रकार से तुम में और मुझ में प्रथम अंतर यह है कि मैं सब कुछ जानता हूं। वेदाम समतितानी वर्तमानानी च अर्जुन, हे अर्जुन वेद अहम सब कुछ जानता हूं। क्या बोले, इस संसार में करोड़ों करोड़ों जीवों के भूत भविष्य वर्तमान, मैं अकेला होकर सबके विषय में सब कुछ जानता हूं, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, संसार के सब लोग मिलकर मुझे एक कृष्ण के विषय में नहीं जान सकते, नहीं जान पाते। तो ये अंतर है मुझ में और तुम में। और दूसरा अंतर, मानो अर्जुन ने कहा, प्रभु आप भी मरते हो? बोले तब तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। तब कृष्ण कहते हैं, अजोपी सन व्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपी सन। अर्जुन अजो, मैं अज हूं, ज का अर्थ है जन्म, अ का अर्थ है नहीं, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता है। अर्जुन तो सिर खुजाने लगा, अभी आप कहते हो कि आपके बहुत सारे जन्म हो गए और अभी दूसरे श्लोक में कहते हो अजोपी। अब देखिए क्रम के अनुसार, पांचवें श्लोक गीता के चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानी, ये अर्जुन मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, और छठे श्लोक में कहते हैं कि अज, अर्जुन मेरा कभी जन्म नहीं होता है। अर्जुन बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरिफिकेशन करो। तब क्लियरिफिकेशन ये है कि ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, अज कृष्ण अजन्मा है। तो फिर बहुने में व्यतीतानी, 5000 वर्ष पहले आए, और मत्स्य नरसिंह वराह ये सब क्या था? बोले ये भगवान के जन्म नहीं है, ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, इसलिए भगवान का एक नाम है अज। अज माने अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं। तो भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं होता है। और अवतार का अर्थ होता है कि भगवान है, कोई चीज है। एक बार मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट में था, मुझे कलकत्ता जाना था, तो वहां तो सब गुजराती में अनाउंसमेंट होता है और हिंदी में होता है, लेकिन शुद्ध हिंदी होता है। तो मैं एयरपोर्ट पर बैठा था 2 घंटे और अनाउंसमेंट हुआ, कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो चुकी है, यात्रियों से निवेदन है सब लोग द्वार पर आ जाए। तुरंत मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि वास्तव में यह शब्द बिल्कुल प्रवचन में बोलने जैसा है। कलकत्ता जाने वाली फ्लाइट अवतरित हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि वे फ्लाइट अवतरित हुई, मतलब आकाश में थी, बादल में थी, परंतु अभी अभी वे लैंड हो चुकी है, पृथ्वी पर आ चुकी, भूमि पर आ चुकी है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो फ्लाइट का निर्माण हुआ, अभी अभी मैन्युफैक्चर हुआ और अभी अभी आई है, नहीं, वो ऑलरेडी थी लेकिन आकाश में थी, पृथ्वी पर जमीन पर आई है। तो भगवान का भी अवतार होता है, और अवतार का अर्थ ये नहीं कि भगवान का अभी अभी प्राकट्य जन्म हुआ, भगवान ऑलरेडी है,
परंतु जब ये पृथ्वी पर आते हैं तब उसे अवतार कहा जाता है, ये है अवतार तत्व। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा अवतार होता है। क्या अंतर है जन्म में और अवतार में? जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह जन्म अपने कर्मों के अनुसार होता है, कर्म बंधन में फंसकर पूर्व में पूर्व जन्म में उन्होंने जो कर्म किए हैं उस कर्म के फल स्वरूप उसे जन्म प्राप्त होता है। लेकिन अवतार, भगवान का अवतार कर्म के फल स्वरूप नहीं होता है, वे अपनी स्वतंत्रता से होता है। और दूसरी चीज, जब इस संसार में किसी का जन्म होता है तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, रोते हुए जन्म लेता है। और इतिहास खोलकर देख लीजिए, भगवान का जब जब जन्म हुआ है रोते हुए नहीं हंसते हुए जन्म हुआ है। कौशल्या और देवकी को प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे प्रभु आप अभी रोने लगी। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, रामायण में वर्णन है, जब भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ तो शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए दिव्य स्वरूप था, करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलता था और विभू स्वरूप, और वह स्वरूप देखकर कौशल्या जी परम प्रसन्न हो गई। लेकिन मन में हुआ, बाहर से सब लोग दरवाजा खटखटा रहे थे क्योंकि पता चल गया कौशल्या जी ने प्रसव कर दिया है, पुत्र का जन्म हुआ। तब कौशल्या जी, रामायण में वर्णन है, प्रभु से कहती है, प्रभु आप अभी छोटे हो जाओ, रोने लगो तब मैं दरवाजा खोलूं, नहीं तो दुनिया वालों को पता चल जाएगा आप साक्षात भगवान हैं। तो भगवान का जब अवतार होता है तो अवतार परम प्रसन्न होकर, रोते हुए अवतार नहीं होता है, उसे कहा जाता है प्रभु आप थोड़ा रोइए और वात्सल्य सुख का आनंद दीजिए। और तीसरा, इस संसार में जब किसी जीव का जन्म होता है तो पूर्ण अज्ञान से उसका जन्म होता है, वह अज्ञानमय होता है। और भगवान का जब अवतार होता है तो पूर्ण ज्ञानमय अवतार होता है, यहां तक कि भगवान अपने बारे में जानते हैं, साथ ही साथ देवकी वसुदेव के पूर्व तीन जन्म के बारे में भी बता देते हैं, पूर्ण ज्ञान रूप अवतार होता है। तो इस प्रकार संसार के जीव का जब जन्म होता है और भगवान का जब अवतार होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वैसे श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक लोगों के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि भगवान का अवतार क्यों होता है। अर्जुन ने भी कहा, अच्छा प्रभु आप अवतार लेते हो तब तो बहुत अच्छी चीज है, तब बताइए प्रभु कदा कदा तव अवतरिष्यति। जब भगवान ने कहा कि मैं अवतरिष्यति, मैं अवतार धारण करता हूं, तो अर्जुन ने कहा प्रभु कदा कदा तव अवतरिष्यति, तब भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्, प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते ही हैं। अर्जुन ने पूछा कदा कदा कब कब आते हो, तब कहते हैं यदा यदा जब जब धर्मस्य ग्लानिर भवती, सबसे पहले कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर। आइए भगवान के अवतार के कुछ कारण हम जान लेते हैं। प्रथम कारण कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानी होती है, अर्थात जब धर्म का विनाश होता है और अधर्म का बढ़ावा होता है, तब अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। जब इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, तब अर्जुन कहते हैं नहीं, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये मैं जो भी बोल रहा हूं आचार्यों की टीका से बोल रहा हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ननु तद भक्ता राजर्षयो ब्रह्मर्षियो अपि धर्म हानि धर्म वृद्धि दूरी करतुम शक्तुम तत एतावत धर्म अर्थ किम अवतारण इति चेत सत्यम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्जुन को माध्यम बनाकर कहते हैं, मानो अर्जुन कहे प्रभु आप धर्म की स्थापना करने के लिए आते हो, बिल्कुल गलत। इस संसार में धर्म की स्थापना बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ऋषि, राजर्षि, धर्मवेता, तत्ववेता कर सकते हैं। जब ये लोग धर्म की स्थापना कर सकते हैं तब आपको इस पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है प्रभु, आप धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते हो, कोई और कारण होगा, बताइए बताइए। तब दूसरे श्लोक में भगवान और दूसरा कारण बताते हैं, अर्जुन तुम वास्तव में जिज्ञासु शिष्य हो, और यदि तुम्हारी जिज्ञासा है कि मेरे अवतार का कारण जानने के लिए, तो सुनो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं इस संसार के साधुओं की भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं। बोले प्रभु वो तो आप अपने धाम में बैठे बैठे भी कर सकते हो, और कोई कारण? बोले विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान ने कहा मैं इस संसार में दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं, असुरों का वध करने के लिए आता हूं। अर्जुन ने कहा बिल्कुल गलत, मैंने भागवत के पांचवें स्कंद में पढ़ा है, भागवत के पंचम स्कंद में किम पुरुष वर्णन में सुखदेव गोस्वामी अन्य लोक लोकांतर का वर्णन करते हैं, तो इसमें इस पृथ्वी पर किम पुरुष वर्ष का वर्णन है, जहां पर हनुमान जी महाराज रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, और हनुमान जी महाराज निरंतर भगवान को स्तुति करते हैं। और बताइए इस संसार में भगवान राम के विषय में हनुमान जी से ज्यादा कौन जान सकता है, कोई है? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र के दास हैं, निरंतर भगवान के साथ रहते हैं, कभी भी भगवान को छोड़ते नहीं है। ऐसे हनुमान जी महाराज कहते हैं मर्त्यवतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षा वदा एव न केवलम विभो। भगवान श्री रामचंद्र का अवतार, भगवान राम का जन्म रावण को मारने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि इस सृष्टि में रावण इत्यादि असुरों को मारने के लिए भगवान का अवतार होता तो एक सेकंड के लिए विचार कीजिए, जो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे एकमात्र अपने आंख के इशारे से मया दक्षिण प्रकृति, अपने आंख के इशारे से पूरे ब्रह्मांड को गिरा सकते हैं, उस भगवान को इस ब्रह्मांड में रहने वाले छोटे से असुर को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं। वे अपने धाम में बैठे बैठे इशारे से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, तो उस ब्रह्मांड में रहने वाले छोटे से जीव को मारने के लिए भगवान को यहां आने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु गलत, आप दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते हो। तब भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। बोले ये भी गलत। तब वास्तव में भगवान कारण बताते हैं, कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, भगवान आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए। भगवान नरसिंहदेव आए हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए नहीं। हम रोज स्तुति गाते हैं दिन में 3 बार। भगवान नरसिंहदेव का अवतार क्यों हुआ? प्रहलाद अल्हाद दाई ने, प्रहलाद जैसे भक्त को अल्हाद आनंद देने के लिए भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य हुआ। इस संसार में भगवान अवतार धारण करते हैं क्यों? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने परित्राणाय साधु नाम। लेकिन साधुओं की रक्षा करने का अर्थ क्या है? साधुओं का दुख दूर करना, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए आते हैं। तो विचार कीजिए इस संसार में भक्तों का सबसे बड़ा दुख क्या है, कौन बता सकता है? वाह, जन्म मृत्यु जरा याद ही है। इस संसार में भक्तों का सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्तों का सबसे बड़ा दुख है भगवान कृष्ण की प्राप्ति न होना, कृष्ण का दर्शन न होना, कृष्ण का विरह ही भक्तों का सबसे बड़ा दुख है। परंतु हमारे जीवन में तो ये दुख तो याद ही नहीं आता है। पैसे नहीं है, ठीक से घर नहीं चल रहा है, ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है, हम तो इस दुख में फंसे हैं। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अपने लेख में बहुत सुंदर बात लिखे हैं, बोले इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग भक्त हैं, परंतु मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हम भक्त है ही नहीं। क्योंकि यदि हम भक्त होते तो हमारे हृदय में बहुत दुख होता, क्योंकि भक्त का अर्थ क्या है? भक्त का एक ही लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति करना। भक्त का एक ही लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति। और भक्तों बताइए, जब हम कोई लक्ष्य ठान लेते हैं और यदि वह लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो हमारे हृदय में दुख होता है कि नहीं? जैसे मान लो कोई हमारा बिजनेस चल रहा है और उस चलते हुए बिजनेस में हमको बहुत आशा है कि इस बिजनेस में हमको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, ये सौदा हो जाएगा, 1 लाख रुपया मिल जाएगा, ये हमारा लक्ष्य है, ये बहुत बड़ी आशा है। परंतु ये लक्ष्य लेकर बैठे हैं 1 लाख रुपया मिल जाएगा, बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी जब बिजनेस होता नहीं है और वो पैसा मिलता नहीं है और हम हमारे लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं, तब हमारे हृदय में बहुत दुख होता है और कभी कभी तो रोना भी आ जाता है, यार हमारा लक्ष्य था पैसा प्राप्त करना, चला गया। भक्तों एक एक तात्विक बात है कि हमारा लक्ष्य यदि पैसा है और पैसा न मिले तो हमारे हृदय में दुख होता है। यदि हमारा लक्ष्य बहुत अच्छा बड़ा फ्लैट खरीदना है और यदि हम नहीं खरीद पाए तो हृदय में दुख होता है। और हम लोग भक्त कहलाते हैं, हम लोग भक्त बने हैं, तो भक्त का लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति करना। और निश्चित आज तक हमें भगवान नहीं मिले हैं तो हमारा लक्ष्य है भगवान, और भगवान हमको नहीं मिले हैं तो हमको दुख होना चाहिए, रोना आना चाहिए, लेकिन न तो हमको दुख हो रहा है न रोना आ रहा है। इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, अर्थात हमारा लक्ष्य भगवान नहीं है, हमारा लक्ष्य कुछ और ही है। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्त का लक्ष्य भगवान होते हैं और भगवान के विरह में उनके हृदय में बहुत दुख होता है, और ऐसे भक्तों के दुख को, भक्त के विरह को दूर करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। महारानी कुंती भी अपनी स्तुति में भगवान के अवतार का अनेक कारण बताती हैं। केचित आहु अजम जातम पुण्य श्लोके य कीर्तय। देवी कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, इस संसार में केचित कुछ लोग कहते हैं कि आप अजन्मा हो, आप कभी जन्म लेते ही नहीं हो, अवतार धारण करते ही नहीं हो। केचित आहु अजम जातम, आप अजन्मा हो। और केचित कुछ लोग ऐसा कहते हैं पुण्य श्लोके या कीर्तय, आप अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आते हो। कुछ लोग कहते हैं कि देवकी और वसुदेव की बहुत बहुत तपस्या से आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए हो, तो कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा इत्यादि देवताओं की प्रार्थना से आप इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हो, तो कुछ लोग कहते हैं इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आते हो। लेकिन कृष्ण, मैं जानती हूं कि आप इस पृथ्वी पर अवतार क्यों धारण करते हो। देखिए यही देवी कुंती अपने स्तुति के प्रारंभ में कहती है कि कथम पश्चिम ही स्त्रिय, हे कृष्ण आपको बड़े बड़े लोग नहीं जान सकते हैं, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मनाम, जो परम हंस है सत असत का भेद जानते हैं, जिसके जो अपने हृदय के सभी मल से मुक्त हो गए हैं, ऐसे अमल आत्मनाम परम हंसा नाम ये सब लोग बड़े बड़े पंडित विद्वान प्रकांड पंडित होकर भी आपको नहीं जान सकते हैं, तो मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे जान सकती है। कथम पश्यम ही स्त्रिय, जो जन्म से ही अभूत होती है, जिसका अज्ञान में ही जन्म होता है, ऐसी साधारण नारी आपके विषय में कैसे जान सकती है। प्रारंभ में कुंती देवी कहती है कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानती हूं, परंतु भक्तों आचार्यों ने अपनी लेखनी चलाई है, वे कहते हैं कि देवी कुंती कृष्ण के विषय में जितना जानती हैं उतना आज तक कोई नहीं जान पाया है। देवी कुंती ने जिस रहस्य को खोला है आज तक इस रहस्य को नहीं खोल पाए। देवी कुंती अंत में कहती हैं, कृष्ण मैं जानती हूं आप इस पृथ्वी पर क्यों आते हो। बोले आप इस पृथ्वी पर आते हो केवल इस संसार में प्रायः सब लोग काम और कर्म के द्वारा दुखों में फंसे हुए हैं। भवेस्मिन क्लिश्यमाणा नाम अविद्या काम कर्म भी, अस्मिन भवे इस पृथ्वी में इस भवसागर में सब लोग क्लिश्यमाणा नाम, क्लिश्यमाणा नाम माने क्लेश प्राप्त किए हैं, दुखी हैं। अस्मिन भवे सर्वाणी क्लिश्यमाणा नाम, इस भवसागर में सब लोग दुखी हैं और दुख का कारण है अविद्या काम कर्म भी। अविद्या काम और कर्म, अविद्या काम और कर्म से अस्मिन भवे संसार में सब लोग दुखी हैं, परंतु आप तो सबके स्वामी हैं, इस दुखी जीवों को आप सुखी करना चाहते हैं। और इस संसार में रहने वाला दुखी जीव जब तक आपकी कथा नहीं सुन लेता है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है, ये आप जानते हो। और इस संसार के दग्ध दुखी जीवों को सुखी करने के लिए प्रभु आप इस संसार में आते हो, और इस संसार में आकर बहुत सुंदर लीला करते हो, और लीला करके आप चले जाते हो, और आपके जाने के बाद वेद व्यास जी आदि इस लीला को लिखते हैं, और फिर संसार के दुखी जीव इस आपकी लीला को यदि सुन लेते हैं तो वे अपने सभी कर्म बंधनों से, सभी दुखों से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बस आपका इस पृथ्वी पर आने का यही कारण है। बहुत सुंदर कारण बताया। कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आए होंगे और जितने लोग उस समय पृथ्वी पर होंगे, तब उन लोगों का क्या सौभाग्य होगा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, कृष्ण को इन आंखों से देखा, कृष्ण का अनुभव किया, कृष्ण से वार्तालाप किया। परंतु देवी कुंती कहती हैं कि कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आए थे और उस समय गोपी आदि इत्यादियों ने कृष्ण के साथ जो व्यवहार किया और उससे जो सुख प्राप्त किया, उसे कोटि गुना ज्यादा सुख कृष्ण की कथा सुनकर प्राप्त हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुन लेता है तो देवी कुंती कहती हैं अपनी स्तुति में कि कृष्ण कथा सुनने वाला भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। शुणवंति गायन्ति गृणन्ति भिक्षणस, भगवान के धाम में जाने का क्रम बता रहे हैं। आप श्लोक के ऊपर बहुत विचार करोगे तो भगवान के धाम में सबसे पहले कौन जाता है? बोले शुणवंति, कथा सुनने वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रभु जी कितने महान हैं, कितना सुंदर प्रवचन करते हैं, ये तो निश्चित भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन कथा बोलने वाले से पहले कथा सुनने वाला भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, ये देवी कुंती बता रही है। इसलिए क्रम के अनुसार शुणवंति गायंती, जो कथा सुनता है वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है, और फिर दूसरा क्रम, दूसरे क्रम में आता है कथा गाने वाला, कथा बोलने वाला गायंती। और नवदा भक्ति के क्रम में भी भक्तों यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है सुनना, श्रवणम, अर्थात हम सब भक्तों का यह कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने। शुणवंती गायंती, गाने वाला भगवान के धाम को प्राप्त करता है। स्मरणती, जो स्मरण करता है वे भगवान के धाम को प्राप्त करता है। गृणंती, जो कथा को गुनगुनाता है भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और अंत में कहती है अनुमोदंती, जो अनुमोदन करता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग रोज मंदिर में भगवान की कथा सुनने नहीं आ सकते हैं, कुछ कार्य में फंस जाते हैं कि जिसे भागवत सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं। परंतु कोई बात नहीं, वे नहीं आ पाए कोई बात नहीं, परंतु अपने घर पे बैठे बैठे यदि इतना सोचे कि मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन इस्कॉन मेरे गिरधारी मंदिर में जो भागवत क्लास होता है बहुत सुंदर होता है, केवल इतना भी सोच ले तब भी वो भगवान के धाम में जा सकता है, तब भी वो भगवान के धाम को प्राप्त। देवी कुंती कहती कही सुनही अनुमोदन करही, सुनने वाला बोलने वाला तो धाम को प्राप्त करता है, लेकिन अनुमोदन, जो भागवत का अनुमोदन कर लेता है, कृष्ण कथा का अनुमोदन करता है, वे भी भगवान के धाम में जाता है। लेकिन संसार में कुछ लोगों का दुर्भाग्य इतना तगड़ा होता है कि बेचारे अनुमोदन भी नहीं कर पाते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। इतना सुंदर भागवत क्लास होता है, बोले इतना जोर से क्यों प्रवचन करते हो, थोड़ा कम करो, कंप्लेंट आती है, अनुमोदन भी नहीं कर सकते हैं। खैर, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर हम जीवों के लिए होता है। भगवान चाहते हैं कि संसार के जीव मेरे अवतार की कथा का श्रवण करे और इन अवतारों की कथा का श्रवण करके इस जीवन में दुखों से मुक्त हो जाए और मृत्यु के बाद मेरे धाम को प्राप्त करे। अतः भगवान अनेकों प्रकार के अवतार धारण करते हैं। शास्त्र में वर्णन है अवतार असंख्या ही, भगवान के असंख्य अवतार हैं, और उस असंख्य अवतार का विभाजन किया जाए तो कुल मिलाकर भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। 6 प्रकार में भगवान के अवतारों को बांटा गया है। प्रथम है पुरुष अवतार, जैसे कांडोदकशायी विष्णु जो ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं, पुरुष अवतार। दूसरा है लीला अवतार, जो मात्र लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। तीसरा है गुणा अवतार, सतोगुण को धारण करके, रजोगुण तमोगुण को धारण करके प्रकट होते हैं, जैसे सत्व गुण को धारण करके भगवान कृष्ण ने विष्णु का अवतार धारण किया, रजोगुण का धारण करके ब्रह्मा जी और तमोगुण को धारण करके शिव जी, इसे गुणा अवतार कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुणा अवतार है, कर्णदक्षायी विष्णु ये पुरुषा अवतार है, लीला अवतार, और चौथा है युगा अवतार, जो प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं उसे युगा अवतार कहते हैं। पांचवा है शक्त्यावेश अवतार, कभी कभी भगवान को आने की जरूरत नहीं, वे किसी विशेष जीव में अपनी शक्ति संचारित कर देते हैं और विशेष कार्य करा लेते हैं, उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, जैसे कि वेद व्यास जी, नारद जी। और छठा है मनवंतर अवतार, प्रत्येक मनु की रक्षा करने के लिए प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार धारण करते हैं, उसे मनवंतरा अवतार कहा जाता है। और ये मनवंतर अवतार की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत के अष्टम स्कंद में करते हैं। भागवत का आठवां स्कंद मनवंतर तत्व के अंतर्गत है, ये भागवत का पूरा आठवां स्कंद मनवंतर की कथाओं से भरा हुआ है। प्रथम मनवंतर से ही प्रारंभ करते हैं और बीच बीच में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते जाते हैं और मनवंतर की कथा सुनाते हुए, आप सब जानते हैं ना मनवंतर की अवधि कितनी होती है, फिर भी स्मरण आस्वादन करने के लिए सुन लिया जाए। आप सब जानते हैं कि 432,000 वर्ष का कलयुग होता है, 864,000 वर्ष का द्वापर युग होता है, और कलयुग से 3 गुना त्रेतायुग और 4 गुना सतयुग। तो इस प्रकार से सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली, ये 4 युग जब मिलते हैं तब 1 चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाते हैं तब 1 मन्वंतर की अवधि समाप्त होती है। 71 चतुर्युग तक 1 मन्वंतर की अवधि होती है, और उस 1 मन्वंतर अर्थात 71 चतुर्युग तक भगवान एक इंद्र को नियुक्त करते हैं स्वर्ग पर शासन करने के लिए, भगवान एक मनु को एक राजा बनाते हैं 71 चतुर्युग का ध्यान रखने के लिए, पूरे ब्रह्मांड का राज्य नियुक्त करते हैं, जिसे मनु कहा जाता है। तो मनु जो है 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करते हैं, और ऐसे मनु की रक्षा करने के लिए, ऐसे मनु के मनवंतर में भगवान अवतार धारण करते हैं, उसे मनवंतर अवतार कहा जाता है। तो मनवंतर अवतार की कथा के अंतर्गत श्री सुखदेव गोस्वामी मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं, जिसका यहां पर कई दिनों से श्रवण हो रहा है। आप सब जानते हैं मत्स्य अवतार अनेकों बार हो चुका है। मत्स्य अवतार की 2 कथा पद्म पुराण में पाई जाती हैं और 2 मत्स्य अवतार की कथा श्रीमद भागवतम में पाई जाती है। पद्म पुराण के अनुसार मत्स्य अवतार, एक बार समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था शंख, और ये शंख बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त करके देवताओं के साथ युद्ध किया, और समुद्र के पुत्र शंख ने देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग का राजा बन गया। ये पद्म पुराण में वेदव्यास जी इस कथा को लिखते हैं। तब उस शंख ने स्वर्ग के आसन के ऊपर बैठकर सोचा कि मैं स्वर्ग का राजा तो हो गया हूं, लेकिन लीगली राजा नहीं बना, इलीगल युद्ध करके राजा बना। देवता लोग यदि अपनी शक्ति बढ़ाए और देवताओं की यदि शक्ति बढ़ गई तो उस शक्ति से फिर से मेरे साथ युद्ध करेंगे, मुझे हरा देंगे और मुझे स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। तब शंख ने सोचा कि ये देवताओं की शक्ति कैसे बढ़ती है। तब शंख के मन में विचार आया, देवताओं की शक्ति यज्ञ से बढ़ती है, और यज्ञ में जो मंत्र की आहुति दी जाती है, जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और ये मंत्र जो है वेदों से लिया जाता है, ये सारे मंत्र वेदों में लिखे हुए हैं, यदि मैं वेद को गायब कर दूं तो न तो होगा यज्ञ और न बढ़ेगी देवताओं की शक्ति और न देवता मुझे हरा सकते हैं, मैं एक छत्र स्वर्ग के ऊपर राज करूंगा। ये किसने सोचा? समुद्र के पुत्र शंख ने, जिसका नाम हुआ शंखासुर, असुर था शंखासुर। तो यह सोचकर एक दिन ये शंकासुर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी। जब जब ब्रह्मा को नींद आई है तब तक ब्रह्मा के हाथ से वेद चले गए। ये ब्रह्मा दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी वेद शास्त्र का ज्ञान धारण करने वालों में से हैं, रोज भागवत का ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेकिन नींद के ऊपर काबू न पाया जाए तो ये ज्ञान भी चला जाएगा। वह शंकासुर ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया और वेदों को चुरा कर विंध्य पर्वत के वेदों को चुरा कर वह भाग गया। उस समय देवताओं के बीच में हाहाकार मच गया और उस समय कश्यप जी कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप विंध्याचल पर्वत की तलेटी में गए, वहां जाकर भगवान का स्मरण किए, बहुत सुंदर शीतल जल में स्नान किए और स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल तर्पण कर रहे थे। उसी समय कश्यप जी के अंजलि में एक छोटी सी मछली आई और कश्यप जी ने उसे कमंडल में रख लिया, फिर बड़े पात्र में रखा। राजा सत्यव्रत की तरह आप कथा जानते ही हैं, धीरे धीरे वह मछली बड़ी हो गई और फिर भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, शंखासुर का वध किया और वह जो वेद था वह ब्रह्मा जी को वापस लौटा दिया। ये पद्म पुराण में कथा है, कश्यप जी के द्वारा भगवान मत्स्य अवतार का अवतार हुआ। और पद्म पुराण में दूसरी एक कथा है, दीति का एक पुत्र था जिसका नाम था मकर, और ये मकर ने भी एक बार दीति से जितने भी पुत्र हुए सब दैत्य हुए, सब असुर हुए, तो मकर नाम का एक असुर हुआ, उसने भी ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिया। ये असुर लोग प्राय वेद चुराते रहते हैं और पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए वेद चुराते तो बहुत अच्छी बात है, बस दूसरों को परेशान करने के लिए वेद चुरा लिया। और उस समय भी भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया उस वेदों का उद्धार करने। तो ये दो कथा पद्म पुराण में है और दो कथा श्रीमद भागवतम में। श्रीमद भागवतम में इस कथा के अलावा, राजा सत्यव्रत की कथा के अलावा, कहते हैं वैवस्वत मनु की रक्षा करने के लिए भी भगवान ने एक बार मत्स्य अवतार धारण किया था। कहने का तात्पर्य यह है, श्रीधर स्वामी इस अवतारों की टीका के प्रारंभ में ही कहते हैं कि ये अवतार का कोई क्रम नहीं है, ऐसा नहीं कि ये अवतार पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ये अवतार इतनी बार हुआ, अवतार ही असंख्य है। भगवान का अवतार असंख्य है, आज भी होता रहता है, क्योंकि कुछ लोग ये अवतारों की चर्चा से बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये अवतार अनेकों ब्रह्मांडों में होता है और अनेकों ब्रह्मांडों की कथा भागवत में पाई जाती है। भागवत तो सभी ब्रह्मांडों के लिए है, तो अनेकों ब्रह्मांडों के अवतारों की कथा भागवत और अन्य पुराणों में होती है। इसलिए हम भक्तों को ये तर्क में न फंस कर यही सोचना चाहिए कि भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं और इन अवतारों की कथा से भगवान की कृपा का स्मरण करना चाहिए। तो आप सब जानते हैं इस कथा के प्रारंभ में कृतमाला नदी में राजा सत्यव्रत एक बार उपवास करके तपस्या करके स्नान करने के लिए कृतमाला नदी में गए और स्नान किए, अपने हाथ में अपनी अंजलि में जल लेकर सूर्य देव को अर्पण कर रहे थे। उसके हाथ में एक मत्स्य एक मछली आई, उन्होंने अपने कमंडल में रखा और फिर अपने राजमहल में लेकर गए। रातों रात बढ़ती गई, बड़े बड़े पात्र में रखते गए, सरोवर में रखा गया तब भी बढ़ गई, तब फिर से उस मछली को समुद्र में डाला गया, विशाल स्वरूप धारण कर लिया। और तब दोनों हाथ जोड़कर सत्यव्रत राजा ने कहा कि हे प्रभु, निश्चित आप कोई साधारण मत्स्य नहीं हो, आप इस विशाल मत्स्य रूप में भगवान विष्णु हो। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा राजन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और आज से 7 दिन के बाद इस संसार में प्रलय होने वाला है और उस प्रलय में सब लोग लोक लोकांतर डूब जाएंगे, परंतु क्योंकि तुमने मेरी भक्ति की है इसलिए उस समय एक दिव्य नाव आएगी, तुम उस नाव में बैठ जाना, सभी ऋषि मुनियों को और संसार के सभी बीज को लेकर नाव में बैठ जाना, और जब तुम्हारी नौका डगमगाने लगेगी, प्रलय के जब में डूबने लगेगी, उस समय मैं इसी रूप में आऊंगा, वासुकी नाग के द्वारा अपनी नौका को मेरे इस बहुत सुंदर मत्स्य अवतार में भगवान मत्स्य के ऊपर एक सिंह था, सोने का सिंह, इस सिंह से मुझे बांध देना, जब तक प्रलय रहेगा तब तक मैं तुम्हारी नौका को तैराऊंगा, इस प्रकार से भगवान ने कहा। और जैसे जैसे भगवान ने कहा वैसे ही 7 दिन के बाद प्रलय प्रारंभ हुआ। राजा सत्यव्रत समस्त ऋषि मुनि और औषधि को लेकर बैठ गए और भगवान मत्स्य आए, अपनी नौका को भगवान मत्स्य के साथ बांध दिए और भगवान उसे उस नौका को तैराने लगे। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिए कि ये प्रलय तो बहुत समय तक चला और भगवान ने उस नौका को बहुत चलाई, बहुत चलाई, तब तक क्या हुआ, तब तक ये वेद जो ब्रह्मा जी से वेद चुराए गए थे, ब्रह्मा जी के हाथ से जो वेद छूट गए थे, भगवान ने सभी वेदों का ज्ञान राजा सत्यव्रत को दिया। सत्यव्रत जी जिज्ञासा करने लगे और भगवान ज्ञान देने लगे। लेकिन ज्ञान देने से पहले और ज्ञान लेने से पहले सत्यव्रत जी भगवान को स्तुति करते हैं। सत्यव्रत जी भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में सबके गुरु यदि कोई है तो वो एकमात्र आप हो। राजा सत्यव्रत भगवान मत्स्य को अपना गुरु बना रहे हैं। और श्री प्रभुपाद जी प्रत्येक श्लोक के परपोट में लिखते हैं कि संसार में जगत गुरु यदि कोई है तो है भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। राजा सत्यव्रत ये स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं और जगत के गुरु हैं। राजा सत्यव्रत जी कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो और आप गुरु बनकर मुझे ज्ञान प्रदान करो। भक्तों सत्यव्रत जी 8 श्लोक में भगवान मत्स्य को स्तुति करते हैं। हमने हमारे गुरु महाराज के मुख से सुना है कि ये 8 श्लोक के द्वारा स्तुति राजा सत्यव्रत के द्वारा एक गुरुवाष्टकम है। वैसे हम रोज सुबह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित गुरुवाष्टकम गाते हैं, संसार दावा नरली डलोक। तो इन 8 श्लोकों में, इस अष्टकम में 8 श्लोकों में गुरु की महिमा का वर्णन है, गुरु की कृपा का, गुरु के प्रति स्तुति का वर्णन है। तो यह है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गुरुवाष्टकम। परंतु भागवत में भी एक गुरुवाष्टकम है, ये पूरे भागवत ग्रंथ में एक गुरुवाष्टकम है और उस गुरुवाष्टकम का ये अंतिम श्लोक है, इसलिए मैं गुरुवाष्टकम की चर्चा कर रहा हूं। गुरुवाष्टकम अष्टकम का अर्थ है 8। राजा सत्यव्रत ने भगवान को गुरु बनाकर, भगवान मत्स्य को गुरु बनाकर उन्होंने बहुत सुंदर उनका गुणगान किया है, जिसे गुरुवाष्टकम कहा गया है। इस गुरुवाष्टकम को भी हमें याद करना चाहिए क्योंकि ये भागवत का गुरुवाष्टकम है। आइए, कुछ दिनों से यहाँ पर प्रायः सब लोग रोज नहीं आते हैं, तो गए 7 दिनों में ये गुरुवाष्टकम का प्रवचन तो हो चुका, लेकिन केवल श्लोक और उनका अनुवाद मैं आपको बता दूं कि आगे के गुरुवाष्टकम प्रत्येक श्लोक में क्या क्या हुआ। सर्वप्रथम इस गुरुवाष्टकम के प्रथम श्लोक में राजा सत्यव्रत कहते हैं, अनादि अविद्या आत्म संविद अपहत। हे प्रभु, ये प्रलय चल रहा है और प्रलय के जल में ये लोग तैर रहे हैं और तैरते तैरते अपने गुरु भगवान को गुरु बनाकर स्तुति करते हैं कि अनादि काल से संसार के जीव अविद्या में फंसे हुए हैं और इस अविद्या का मूल क्या है, अविद्या का कारण कहते हैं तत्मूल संसार परिश्रम आतुरा। इस संसार में अविद्या का कारण क्या है, बोले संसार में परिश्रम करने के लिए जो आतुर है। इस संसार में कुछ लोग बस यही सोचते हैं कि हार्ड वर्किंग, रात दिन परिश्रम करेंगे और इसी के लिए, धन के लिए, भौतिक सुख के लिए आतुर रहते हैं। और यद इच्छया इह उपसृता यम विमुक्ति, ऐसे आतुर जीव यदि इच्छा करे तो आपके शरण में आकर वे मुक्त हो सकते हैं, आप उसे मुक्ति दे सकते हैं क्योंकि आप इस संसार के समस्त जीव के परम गुरु हैं। निज कर्म बंधन अयम, दूसरे श्लोक में कहते हैं गुरुवाष्टकम के दूसरे श्लोक में, बोले संसार में निज कर्म बंधनम अयम, संसार के सब लोग निज कर्म बंधनम, अपने कर्म बंधन में फंसे हुए हैं और सुख इच्छया असुखम कर्म समीहते, और सुख पाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु यत सेवया ताम असतमतिम विदुनोति, परंतु जिनकी सेवा करने से संसार के जीव अपनी समस्त असतिमति अपनी दुर्बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं, वैसे आप परम शुद्ध गुरुदेव हैं। कहने का भाव यह है कि आप गुरुदेव का स्मरण करने से संसार के जीव की मति जो है शुद्ध हो सकती है, पूर्ण रूप से ज्ञान हो सकता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं यत सेव याग्नेव रीव रुद्र रोदनम पुमान जीवनया मलमात्मस्तम। इस संसार में जिस प्रकार से अग्नि में रुद्र रोदनम का अर्थ होता है सोना और चांदी, जैसे सोना और चांदी में कभी कभी देखा गया है कुछ मिलावट होती है, 18 कैरेट 8 कैरेट 10 कैरेट उसमें कुछ मिलावट होती है, परंतु सोने और चांदी को जब अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि के द्वारा वह जो मिलावट वाला भाग होता है वह अलग हो जाता है और प्योर सोना अलग हो जाता है। तो जैसे अग्नि में सोने को डालने से उसका मल दूर हो जाता है, वैसे ही आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करने से संसार के जीव का अज्ञान दूर हो जाता है और वह जीव परम पवित्र हो जाता है। अतः हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। अगले श्लोक में कहते हैं न यत प्रसादा युत भाग लेश, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सुंदर गुरु की महिमा का इसमें वर्णन है। मन्ये च देवा गुरुओ जना स्वयं कर्तु समेता प्रभवन्ति पुंस तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। न यत प्रसादा युत भाग लेश, इस संसार में एक गुरु अपने शिष्य को जो दे सकता है वह वस्तु संसार के सब लोग मिलकर भी नहीं दे सकते। कहते नयत प्रसादा, संसार के समस्त मनुष्य मिलकर एक व्यक्ति को जितना दे, बोलते हैं संसार के जीव की बात तू रही देवा, कहते हैं देवता गंधर्व किन्नर और अन्य सब लोग मिलकर भी, 33 करोड़ देवी देवता मिलकर भी एक शिष्य को जो नहीं दे सकते हैं उतना गुरु उसे दे सकते हैं। भागवत में कहा गया है चिंतामणि लोक सुखम, इस संसार में यदि मनुष्य की कृपा हो जाए तो संसार के लोगों की कृपा से हमें क्या मिलेगा, चिंतामणि, और उस चिंतामणि से क्या प्राप्त होगा, संसार का सुख, इस पृथ्वी का सुख। और यदि देवताओं की कृपा हो जाए तो देवता लोग ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, बोले कल्प वृक्ष सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, देवताओं की कृपा से कल्प वृक्ष मिल सकता है और उस कल्प वृक्ष से ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, स्वर्ग का सुख। चिंतामणि से भौतिक सुख मिलता है और कल्प वृक्ष से स्वर्ग का सुख मिलता है, लेकिन गुरु की यदि कृपा हो जाए तो शिष्य को वैकुंठ का सुख मिल सकता है। योगी नाम अपि दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी रात दिन योग करते रहते हैं परंतु जिस सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं ऐसा सुख गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो सकता है। और ये सब लोग मिलकर भी उतनी कृपा नहीं कर सकते हैं, इनका कहने का भाव बहुत सुंदर है। बोले युत नयत प्रसादात युत भाग लेश, युत का अर्थ होता है 10,000, अयुत माने 10,000। बोले इस संसार के समस्त मनुष्य 33 करोड़ देवी देवता गंधर्व किन्नर यक्ष ये सब लोग मिलकर किसी एक जीव के ऊपर कृपा करे, ये सब की कृपा भगवान की कृपा के 10,000वें हिस्से के समान भी नहीं है। युत भाग लेश, एक गुरु के कृपा के 10,000वें भाग भी नहीं है। कौन कह रहे हैं, राजा सत्यव्रत भगवान मत्स्य को गुरु बनाकर बता रहे हैं कि हे गुरुदेव ये आपकी हम पर कृपा है। और आगे कहते हैं ये चक्षुरंधस्य यथा ग्रणीकृत तथा जनस्य विदुषो बुधो गुरु, जैसे नेत्रहीन व्यक्ति अंधे को आगे चलाने वाला हो जाता है। इस संसार में यहां पर बोगस गुरु की बात की जा रही है, बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की जाए, आप लोग सुनते ही आए हैं। इस संसार में कुछ लोग जीवन का मार्ग ग्रहण करने के लिए किसी गलत गुरु को चुन लेते हैं। बोले ये गलत गुरु कैसे हैं? यथा अचक्षु अंधस्य अग्रणी, यथा जैसे अचक्षु, जैसे अंधा व्यक्ति, अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करना है तो अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करने के लिए अंधस्य अग्रणी, अंधे को ही अग्रगण्य बना ले तो क्या होगा? वे दोनों अंधे गिरेंगे। वैसे ही संसार में आप जैसे गुरु यदि किसी को नहीं मिलते हैं और किसी थर्ड क्लास के गुरु के पास कोई चला गया तो वह गुरु भी गिरेगा, वह चेला भी गिरेगा। अतः आप इस संसार के जगत गुरु हैं, अतः कृपया करके आप सूर्य के समान अर्कद्रिक, इस संसार में ज्ञान देने के लिए आप सूर्य के समान हो, अर्क के समान, कृपया करके आप मुझे ज्ञान दीजिए और इसलिए मैंने आपको गुरु बनाया है। आगे कहते हैं, जनो जनस्या दिशते सतिम मति यया प्रपद्यत दुरत्ययम मम। लोग तो दूसरे लोगों को असत बुद्धि देते रहते हैं, असत बुद्धि का उपदेश करते हैं, परंतु आप जैसे गुरु निश्चित रूप से शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। और बाद में कहते हैं, सर्व लोकस्य तम सुहत, संपूर्ण लोकों के आप सुहद हैं, आप प्रिय स्वामी हैं, आप सबका हित चाहने वाले हैं। वास्तव में इस संसार में केवल दो ही लोग दूसरों का हित कर सकते हैं, दो ही लोग। रामायण में वर्णन है, हे तू रहित जग जुग उपकारी, इस जगत में रहने वाले लोगों के ऊपर हेतु रहित कृपा करने वाले केवल दो ही लोग हैं। हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुमार सेवक असुरारी। दो ही लोग अकारण करुणा करते हैं, अकारण हित करते हैं। कौन? कहते हैं एक तो भगवान और एक भगवान के भक्त है गुरुजन। गुरु अकारण करुणा करते हैं, बिना हेतु के, बिना कारण के कृपा करते हैं, क्योंकि गुरु को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। अतः जीवन में जब दुख आए, चिंता हो, तब गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमारे आदर्श राजा महाराजा इत्यादि ने हमें दिखाया है। आपने रामायण में देखा राजर्षि दशरथ, दशरथ जी के जीवन में दुख आया। एक बार वे अपने महल में बैठे थे, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। बोले तीन तीन पत्नी है, विवाह हुआ, इतना दिन बीत गया, परंतु मुझे पुत्र नहीं। तब तुरंत अगले श्लोक में वर्णन है, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, पूरी पृथ्वी के स्वामी होकर भी गुरु के आश्रम में गए, गुरु के पास गए। क्यों? क्योंकि गुरु जो है सत्य मार्ग, सत्य उपदेश देते हैं, क्योंकि उसका कोई प्रलोभन नहीं होता है। और अंतिम श्लोक आज का जो है, इस गुरुवाष्टकम का अंतिम श्लोक है, इसकी व्याख्या करने का समय तो रहा नहीं, आइए मैं तेज गति से इनकी व्याख्या संक्षिप्त में कर दूं। इस श्लोक में कहते हैं, त्वं त्वाम महम देव वरम वरेण्यम प्रपद्य ईशम प्रतिबोधनाय चिंद्यर्थ पे भगवन वचो भी ग्रंथिन हृदयान विवणु स्वलोक स्वमोक। कहते हैं, त्वं त्वाम हे प्रभु, त्वं त्वं माने आगे सात श्लोकों में जो वर्णन हुआ है, त्वं ऐसे आपकी शरण में मैं आया हूं। त्वं त्वाम शरणम प्रपद्ये, मैं आपके पास आया हूं। अहम प्रपद्ये, हे प्रभु मैं आपके पास, आपकी शरण में आया हूं। तब मानो भगवान मत से कहे कि राजा सत्यव्रत जी आप मेरी शरण में ही क्यों आए। यहां पर शब्द है ना प्रपद्ये, दूसरी लाइन का पहला शब्द त्वम त्वाम, अन्वय के अनुसार त्वम त्वाम प्रपद्ये, त्वम मैं आपकी शरण में प्रपद्ये आया हूं। तो मानो भगवान मत से कहे कि सत्यव्रत जी आप मेरी शरण में ही क्यों आए, आप मेरी शरण में क्यों आए। इस संसार में अनेक लोग हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, अनेक मनुष्य गंधर्व किन्नर, सबको छोड़कर मेरी शरण में क्यों आए। तब सत्यव्रत जी कहते हैं देव वरम वरेण्यम। सत्यव्रत जी कहते हैं मैं आपकी शरण में इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले आप देव वरम आप देवताओं के भी देव है। देव वरम देवानाम अपि, एक आचार्य लिखते हैं तम देवतानाम परमम च देवतम। मैं देवताओं की शरण में इसलिए नहीं गया क्योंकि देवताओं की भी देव आप हो, देवताओं के भी आप देव हो, इसलिए आप देव वरम हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। और वरेण्यम आप वास्तव में आप ही वरण करने योग्य हो। तमुक्त विदम वरेण्यम, मानो भगवान कहे आपने मुझे ही क्यों वरण किया। तब सत्यव्रत जी कहते ईशम, एक शब्द है यहां पर ईशम, हे प्रभु आप देव वरम हो, आप देवताओं की भी देव हो और आप ईशम आप जगत के स्वामी हो, अतः वरेण्यम। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं आप देवताओं के देव हो और ईश हो, इसलिए मैंने आपका वरण किया है। और क्या बताऊं, आपका वरण करने का तीसरा कारण कहते हैं भगवान, एक शब्द आया है भगवान। अब व्याख्या तो आप सुने हैं षट ऐश्वर्य, आप परम सुंदर हो, परम ज्ञानी हो, परम शक्तिशाली हो, परम यशस्वी हो, परम वैराग्य हो, अतः त्वम शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में आया। वास्तव में इस श्लोक की व्याख्या में बहुत कुछ बोला जा सकता है। बोले वरेण्यम, इस संसार में वरण करने लायक यदि कोई है तो वह है भगवान कृष्ण। कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करना, यह जीव का कर्तव्य है। और हमारी बात दूर रही, हमारे आदर्श है महाजन, और सभी आदर्शों में है लक्ष्मी जी जो भगवान की परम भक्ता है। आप सब समुद्र मंथन के प्रसंग में जानते हैं, जब देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद लक्ष्मी जी को विवाह करना था, लक्ष्मी जी को वर चुनना था। वरेण्यम शब्द के ऊपर मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मी जी को वर चुनना था, किसी का वरण करना था, परंतु लक्ष्मी जी के सामने बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लोग थे। अब किसी किसका वरण करे, तो लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर, वर माला लेकर लक्ष्मी जी चलने लगी। और चलते हुए लक्ष्मी जी अनेक लोगों के सामने देख रही हैं, और अनेक लोगों के सामने देखकर लक्ष्मी जी रिजेक्ट करते जा रही है। और मानो सुखदेव गोस्वामी प्रेस रिपोर्टर बनकर लक्ष्मी जी के पास माइक लेकर चले गए, बोले आपने इसको क्यों रिजेक्ट किया, इसको क्यों रिजेक्ट किया। और लक्ष्मी जी उत्तर भी दे रही है, भागवत में चार श्लोक में, तीन श्लोक में इसका उत्तर है, नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो। बोले मैंने नूनम तपो यस्य, इस सभा में एक से एक ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े एक से एक सुंदर व्यक्ति बैठे हैं। बोले असुर भी कोई कम नहीं थे, कभी कभी कुछ कुछ देवताओं से भी असुर सुंदर दिखते थे, बलि महाराज जिसकी अद्वितीय सुंदरता थी। बोले इस सभा में एक से एक लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सब में घट रहा है, कुछ ना कुछ कमी सब में। और वरण तो उसका करना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो। यहां पर भगवान का प्रश्न है मत्स्य का, भगवान मत्स्य का कि माम प्रपद्यते कह, क्यों मेरी शरण ग्रहण कर रहे हो, क्यों मेरे पास आए। तब कहते वरण्यम, क्योंकि आप वरण करने योग्य हो। और वरण उसे किया जा सकता है जिसमें सभी गुण हो, सर्वगुण संपन्न हो। तो यहां पर जितने भी लोग लक्ष्मी जी देख रही हैं, रिजेक्ट कर रही हैं, बोले सबसे पहले लक्ष्मी जी की दृष्टि दुर्वासा के ऊपर गई। क्या पता दुर्वासा साहब जी पहुंच गए होंगे, क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करना कौन नहीं चाहता है। ये सारी बात श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिख रहे हैं। बोले लक्ष्मी जी की दृष्टि दुर्वासा के ऊपर गई, बोले कितनी तपस्या कर रहा था, करता है। बोले अद्भुत तपस्या है, और दुर्वासा जी की तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। नूनम तपो यस्य, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इनकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। लेकिन न मन्यु निर्जयो, लेकिन क्रोध के ऊपर कोई वश नहीं है। अब दुर्वासा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्रोध करने में और श्राप देने में अव्वल नंबर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जितने श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिए उतना और किसी ने नहीं दिया। एक और सभी ऋषि मुनियों के श्राप और एक और दुर्वासा के श्राप। तो दुर्वासा ऋषि में तपस्या है लेकिन क्रोध के ऊपर इनका कोई वश नहीं है। ज्ञानम क्वचित तच्च न संग वर्जितम, और इस सभा में एक से एक ज्ञानी बैठे हैं और सभी ज्ञानियों के राजा शुक्राचार्य खड़े हैं। भगवान को भी गीता में कहना पड़ा कवि नाम उष्णाम कवि, बोले ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूं। ऐसे शुक्राचार्य वहां पर खड़े थे और हाथ में लक्ष्मी जी के हाथ में माला थी और वरण करना था। बोले क्या ज्ञानी है, कितना सुंदर ज्ञान है। बोले शुक्राचार्य में ज्ञान तो है परंतु ये आसक्ति से मुक्त नहीं है, इसे अपने यजमान में आसक्ति है। बोले इसके पास ज्ञान है परंतु आसक्ति से मुक्त नहीं है, यजमान में आसक्ति है। बलि महाराज में इसकी पूर्ण रूप से आसक्ति थी। आगे कहते हैं क्वचित महंतस्य न काम निर्जय, इस सभा में कुछ लोग बहुत महान है, अति महान, परंतु उसकी कीर्ति उसका यश बिगड़ा हुआ है। इस सभा में ब्रह्मा जी खड़े हैं, बताइए ब्रह्मा जी से महान कौन हो सकता है। सृष्टि के प्रथम जीव, किसी को भी दुख होता है तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारा ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले दिया, ब्रह्म को धारण करने वाले ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा जी जैसे महान लोग इस सभा में हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी मैं वरण नहीं कर रही हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की कीर्ति नष्ट हो गई है? महान है लेकिन अपनी पुत्री के पीछे आसक्त हो गए। और स ईश्वर रम की परतो व्यपाश्रय, और इस सभा में कुछ लोग बड़े बड़े राजा हैं, लेकिन वह राजा क्या काम का जो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। बोले इंद्र है 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा और इसे मैं मेरा पति बना सकती हूं, लेकिन इसे भी साल में 2-3 बार जाना पड़ता है किसी और के पास, मेरा स्वर्ग छीन लिया गया है मेरी रक्षा कीजिए, क्या काम का। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौर्दम, इस सभा में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का पालन करने में सर्वश्रेष्ठ। कैसा धर्म का पालन? अपने मातृ धर्म पितृ धर्म का पालन। पिता ने कह दिया कि अपनी मां का मस्तक काट दो, अपने फरसू से उड़ा दिया परशुराम। पिता ने कहा अपने सातों भाई का मस्तक काट दो, खच खच करके उड़ा दिया। अपने पितृ धर्म का पालन करने वाले इस सभा में है लेकिन जीवों के प्रति सौहार्द नहीं है। ऐसे वर को प्राप्त करके मैं क्या करूंगी, ऐसा वर मुझे नहीं। त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, और इस सभा में कुछ लोग बहुत बड़े त्यागी बैठे हैं, बहुत बड़े त्यागी बैठे हैं। कैसे? बोले महाराज नृग शिवी महाराज जैसे, परंतु मात्र त्याग ही मुक्ति का कारण नहीं है। वीरियन पुंसो अपि जीवे निष्कृतम, इस सभा में एक से एक वीर बैठे हैं जैसे कार्तवीर अर्जुन, परंतु बड़े बड़े वीरों को भी भगवान के हाथों से मरना पड़ता है। और नहीं द्वितीय गुणसंग वर्जित, और कुछ लोग दिखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन अपनी पत्नी रुठ जाए तो मनाने को नहीं आता है। किसके विषय में कहते हैं? बोलते हैं सनकादिक। आगे तीसरे श्लोक में लक्ष्मी जी कहती हैं, सुखदेव गोस्वामी माइक लेकर खड़े हैं, क्वचित चिरायु नहीं शील मंगलम, इस सभा में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबी आयु वाले हैं। प्राय स्त्री चाहती है कि मेरा पति कभी न मरे, मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं, और यह स्त्री का सौभाग्य है क्योंकि स्त्री के पहले उसका पति मर जाए तो स्त्री के जीवन में बहुत दुख होता है। तो इस सभा में मार्कंड ऋषि जैसे अनंत कल्पों की आयु वाले हैं। मार्कंड ऋषि के पास बहुत आयु है लेकिन रूठी हुई पत्नी को मनाना नहीं आता है। तो जो अपनी रूठी हुई भारिया को न मना सके वो पति क्या काम का, इतनी लंबी आयु होने के बाद भी। क्वचित तदप्यति न वेद्य मायुष, और कुछ लोग बहुत महान है तो उसकी आयु का कोई ठिकाना नहीं। यत्रो भयम कुत्र न सोप्य मंगलम, किसी कुछ कुछ लोगों में का स्वभाव भी अच्छा है और अपनी पत्नी को मनाना भी जानते हैं। लेकिन उसका वेश अच्छा नहीं है। बोले शिव जी इस सभा में है और शिव जी को मैं मेरा पति बना लूं, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, अपनी पत्नी को रूठी हुई पत्नी को मनाने में, और कहीं भी जाना है तो पत्नी को साथ में लेकर जाते हैं, स्वभाव अच्छा है, लेकिन कपड़े पहनने का कोई ज्ञान नहीं है, न तो कभी सलून में जाते हैं, न ढंग का कपड़ा पहनते हैं, किसका वरण करूं। बोले इस सभा में ये सब लोग मेरे काम के नहीं, हां इस सभा में एक व्यक्ति है जिसके गले में ये वरमाला में डाल सकती हूं, जिसका वरण कर सकती हूं, लेकिन वो मेरे सामने नहीं देख रहा है, उसमें भी दोष देख लिया। भगवान विष्णु सभा में बैठे थे, बोले ये सबको छोड़कर एक है, विष्णु में ये सारे गुण है, परंतु उसमें भी उन्होंने दोष देखा। बोले ये इसमें सब गुण है तो ये मेरे सामने नहीं देख रहे हैं, ये वैराग्यशाली पत्नी है ना, कितना भी अच्छा पति हो, संसार के लोग कितने भी वाह वाह करते हो, लेकिन पत्नी तो कहीं ना कहीं से दोष ढूंढ ही निकालती है। तो इस प्रकार से फिर कहा कि ठीक है चलो मेरे सामने ही देखते हैं, कोई बात नहीं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरण किया, विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी के द्वारा भी वरण करने योग्य एकमात्र भगवान विष्णु है, अतः हे प्रभु मैंने आपको वरेण्यम, मैंने आपको वरण किया। तब मानो भगवान कहे कि ठीक है आपने मुझे वरण कर लिया, अब आप क्या चाहते हो, मेरा वरण करके तुम क्या चाहते हो। तब सत्यव्रत जी कहते हैं प्रतिबोधाय, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे बोध करो, बोध माने ज्ञान दो। ऐसे बहुत टीकाएं हैं, प्रतिबोधाय तत्व उपदेशाय, सिद्ध स्वामी कहते हैं कि आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करो, तात्विक ज्ञान आप मुझे बताओ। विजय ध्वज जी कहते हैं प्रतिबोधाय तत्व स्वरूप विषय ज्ञान अहम, आप अपने स्वरूप का ज्ञान मुझे प्रदान करो, आप मेरे स्वरूप का, जीव के स्वरूप का और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मुझे करो, अतः इसलिए मैं आपके शरण में आया। तो मानो भगवान कहे कि आप मुझसे ही ये ज्ञान क्यों सुनना चाहते हो, आप मुझे ही क्यों गुरु बना रहे हो, मुझसे ही ज्ञान क्यों सुनना चाहते हो। तब बहुत सुंदर बात कहते हैं अर्थ दीपे वच भी, हे प्रभु आपके मुख से निकलने वाला ज्ञान अर्थ दीपे, अर्थ दीपे माने आपके मुख से निकलने वाला ज्ञान परमार्थ को प्रकाशित करने वाला है। परमार्थ माने परम, इस संसार में किसी जीव का सबसे बड़ा परमार्थ यदि कोई है, परम अर्थ यदि कोई है तो वो है कृष्ण प्रेम। वैसे मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके पंचम पुरुषार्थ जिसे संतों ने परम पुरुषार्थ माना है, ये परम पुरुषार्थ यदि कोई है तो वो है कृष्ण प्रेम। अर्थ दीपे, हे प्रभु आप अर्थ दीपे, आपकी वाणी जो है अर्थ दीप, परम पुरुषार्थ को देने वाली, कृष्ण प्रेम देने वाली आपकी वाणी है। तब मानो भगवान कहे कि मेरी वाणी अर्थ दीपे परम प्रेम देने वाली है, भगवत प्रेम प्रदान करने वाली है, तो ऐसी वाणी सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा। मानो कभी कभी मन में प्रश्न हो कि ये भागवत जो है परम प्रेम देने वाली अर्थ दीप वाणी है, तो इस भागवत को सुनकर, ऐसी वाणी को सुनकर, शुद्ध उपदेश सुनकर क्या प्राप्त होगा। तब सत्यव्रत जी कहते दो चीज प्राप्त होगी, सर्वप्रथम हृदय ग्रंथि छिंदा, भगवान के मुख से जो प्रवचन निकला है ऐसी गीता और भागवत को सुनकर कहते हैं हृदय ग्रंथि छिंदा, हमारे हृदय में जो ग्रंथि है, आचार्यों ने हृदय ग्रंथि का बहुत व्याख्या की है। बोले हृदय ग्रंथि का अर्थ है संसार में भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति, और ऐसी आसक्ति ग्रंथि का अर्थ होता है, हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, गुजराती में कहते हैं घूस। जब लोग पतंग चगाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, और पतंग उड़ाते उड़ाते कुछ लोग बहुत घसीट लेते हैं, फिर वो मांझा बहुत जमा हो जाता है, और फिर उस मांझे में घूस हो जाती है, और वो एक दूसरे के साथ लिपट जाता है, फिर वो बहुत उसका उसका ढगला हो जाता है, उसको खोल नहीं सकते हैं, बहुत बहुत वो रस्सी होती है, बहुत मांझा होता है, लेकिन वो फंस जाता है, वो निकल नहीं सकता है। इसी को कहते हैं हृदय ग्रंथि। हमारे हृदय में भी ऐसी ग्रंथि जम गई है जिसको खोलना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे मांझा बहुत फंस जाता है उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग, अब कुछ लोग तो अब उसे खोलते नहीं, काट कर फेंक देते, कौन मगजमारी करेगा है? तो उसी प्रकार हमारे हृदय में भी हृदय ग्रंथि हो गई है। आसक्ति के ऊपर आसक्ति, उसके ऊपर आसक्ति, ऊपर 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 आसक्ति। और बहुत, अभी समय नहीं है लेकिन इस पर बहुत मनन किया जाता है। कभी 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 आप घर पे जानबूझकर वो घूस कर दो फिर आप उसको जितना खींचने का प्रयास करोगे ना, वो उतनी कड़क होते जाएगी, उतना आप उसमें फंसते जाओगे। तो ये हृदय ग्रंथि कुछ ऐसी है, ये दलदल के समान हो जाती है, जितना निकलने का प्रयास करते उतना फंसते जाता है जीव। तब उस हृदय ग्रंथि से मुक्त होने के लिए कोई उपाय? बोले हम अपने से उस हृदय ग्रंथि से मुक्त नहीं हो सकते हैं, भगवान की तरह ऐसे शुद्ध गुरु के मुख से जब भागवत और गीता का उपदेश सुनते हैं तो इस हृदय ग्रंथि से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, कहते सारी हृदय ग्रंथि से मुक्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, दूसरी चीज क्या प्राप्ति होती है? तो अंत में कहते हैं ग्रंथिन हृदय, हृदय ग्रंथि से मुक्त हो जाते हैं। और विवृणु स्व मोकह, मोकह स्व मोकह का अर्थ होता है भगवान का धाम। वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, भगवान का स्वरूप, भगवान का मंदिर, अनेक आचार्यों ने अलग अलग अर्थ किए हैं, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही समझिए, मोकह माने भगवान का धाम, स्व मोकह माने भगवान का स्वधाम, वैकुंठ लोक। यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश सुनता है तो सत्यव्रत जी कहते विवृणु, विवृणु माने प्राप्त कर लेता है, किसे? भगवान के धाम, वो वैकुंठ, वो गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लेता है भगवान के मुख से उपदेश सुनकर। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैंने आपको वरण किया है, मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, अतः आप मुझे उपदेश दीजिए, जिस उपदेश से हृदय की सारी ग्रंथि टूट जाए और आपका स्वरूप, आपका प्रकाशित, आपका धाम प्राप्त हो जाए, आप ऐसा उपदेश प्राप्त किए मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से सत्यव्रत जी भगवान को यह अंतिम प्रार्थना, अंतिम श्लोक में प्रार्थना करते हैं। और सत्यव्रत जी की इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं और सत्यव्रत जी को वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें गुरु को भगवान का स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सबके गुरु भगवान हैं, परंतु भगवान ने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान अपने जीवन में आचरण करके प्रकाशित करने वाले को भी भगवान का स्वरूप माना गया है। भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं आचार्य माम विना विजानियात। ये जो आचार्य है, भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर जो प्रकाशित करते हैं उसे आचार्य कहते हैं। और ऐसे आचार्य को मेरा स्वरूप समझो, आचार्य माम विजानियात, और न अवमनियत कर ही चित, कभी इसका अवहेलना मत करो। तो भगवान गुरु भगवान का स्वरूप होता है, तो चाहे भगवान को ही गुरु समझो और गुरु को भगवान का स्वरूप समझकर, गुरु भी अचिंत्य भेदा भेद तत्व है, ये भी एक अलग विषय है। गुरु भगवान का स्वरूप है भी और नहीं भी, परंतु गुरु को भगवान की तरह आदर देकर उनसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा करनी चाहिए, जैसे सत्यव्रत ऋषि भगवान मत्स्य को कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। यदि आप प्रसन्न हैं तो आशीर्वाद दीजिए, हिम्मत कीजिए।